श्री बादरायणी रुवाच सोलहवा अध्याय अथ देवऋषि राजन संपरेतम नृपात्मजम दर्शयित्वेति होवाच ज्ञाति नामनुशोचताम अथ देवऋषि राजन संपरेतम नृपात्मजम दर्शयित्वेति होवाच ज्ञाति नामनुशोचताम श्री नारद उवाच जीवात्मन पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च वा मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ताः सुचा तत्कृतया वृषं कलेवरं समाविश्य शेषमायुः सुहृद्वृतः भुङ्क्ष्व भोगान् पितृप्रतान् अधितिष्ठ निपाशनम् जीव उवाच कस्मिन् जन्मनि अमि मह्यम् पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यङ्गृजोनिषु बन्धुज्ञातरिमध्यस्थ मित्रो दासेन विद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः यथा वस्तूनि पाण्यानि हेमादीनिस्ततस्ततः पर्यटन्ति नरस्वेवम् जीवो योनिषु कर्तृषु नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो यनित्यो दृश्यते नृषु यावद् जस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहङ्कृतः यावद् यत्रोपलभ्येत तावत् सत्त्वं हि तस्य तत् एषा नित्यो व्ययः सूक्ष्मः एषा सर्वाश्रयः स्वदृक् आत्मगुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजते प्रभु न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चित् अप्रियः स्वपरोऽपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयो न दत्तयात्मा हि गुणम् न दोषं न क्रियाफलम् उदासीनवदासीनः परावरदृगीश्वरः श्रीपादरायणीरुवाच अथ देवर्षिराजन् सम्परेतं नृपात्मजम् दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम्।
श्री नारद उवाच सुहृदो बान्धवास्तप्तः सुचात्वत्कृतया वृषम्। शेषमायुसुह्यदत्त भुङ्गवः भोगान् पितृप्तान् धितिष्ठ नृपासनम्।
कस्मिन् जन्म मयमि मह्यम्
पितृ मातरो भव कर्मभिर्ब्राह्म्यमाणस्य देवतिर्यङ्गयोनिषु।
बन्धुज्ञात्यरि मध्यस्थ मित्रो दासीन् विद्विषः सर्वम् एव हि सर्वेषाम् भवन्ति कर्मसो मिथः।
हेमादीनि ततस्ततः पर्यट्टन्ति नरस्वेवम् जीवो योनिषु कृत्रिषु।
नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो यन्नित्यो दृश्यते नृशो यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि।
एवं जोनिगतो जीव सो नित्य निरहंकृतः यावद् नोपालभेद्यता वत्त सत्त्वं हि तस्य तत्।
एष नित्यो वयः सूक्ष्मम् एष सर्वाश्रयः स्वदृक् आत्ममायागुणैः विश्वम् आत्मानं सृजते प्रभुः।
कसिद्धादृशकृपिवा एक सर्वादिदष्टकर्तृणा गुणकर्तृणा गुणदोषयो।
न दत्त आत्मा हि गुणम् न दोषं न क्रियाफलम् उदासीन वदासीन परावदृगीश्वरः।
माताजी लोग
श्री बादरायणी उवाच अथ देव ऋषि राजन् సంపరేటం నృపాత్మజ దర్శయిత్వా ఇతి హోవాచ్ జ్ఞాతీనామనుసూచత.
నారద ఉవాచ, శ్రీ నారద ఉవాచ, జీవాత్మా పశ్యన్ భద్రతే, ఆత్మా పశ్యన్ భద్రతే, మాతరం పితరం చతే, సూరత బాంధవ తప్తా శుచాత్వత కృతయా భృశం కృతయా భృశం.
కలేవరం స్వమావిశ్య శేషమాయోసుహృదేద్భుత భుక్ష్మ భోగాన్ పితృప్రత నదితిష్ఠ నృపాసనం.
జీవువాచ కస్మిన్ జన్మాన్ జన్మీ మహ్యం పితరో మాతరో భవన్ కర్మ విభ్రామమాణస్య దేవర్తియాను యోనిషు.
బంధు జ్ఞాత్యరి మధ్యస్థ మిత్రో దాసిన విద్విష సర్వ ఏవ హి సర్వేషాం భవంతి క్రమశో మిథ.
శ్రీ బాదరాయణి వాచ. శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి అథ దేవ ఋషి దేవర్షి నారద్ జీ రాజన్ హే మహారాజ్ పరీక్షిత్ సంపరేతం మరే హువే నృపాత్మజం రాజకుమార్ కో దర్శయిత్వా దిఖాకర్ యా జిలాకర్ ఇతి యా హా ఆశ్చర్య కి బాత్ హై వాచ बोले ज्ञाति नाम कुटुंब के लोग अनुशोचताम बहुत शोक कर रहे थे उनसे उनको दिखा कर ये अर्थ है तो अंगिरा जी के उपदेश के बीच में देवर्षि नारद जी बोलते हैं. उन्होंने सोचा कि बिना वैराग्य के भगवान में दृढ़ प्रेम नहीं होता है और वैराग्य का अर्थ है कि संसार की जो स्थिति है उसको जान लेना दुखमय है और अनित्य है क्षणभंगुर है ये जान लेना. इसीलिए राजा के मरे हुए बेटा को उन्होंने जीवित कर दिया. उनमें यह शक्ति है नारद जी में. अथ देव ऋषि राजन संपरेतम निर्वात्मजम दर्शयित्वा संपरेतम निर्वात्मजम मर करके पड़े हुए राजा के बेटा को दर्शयित्वा, दर्शयित्वा का यह अर्थ नहीं है कि उसको दिखाकर, दर्शयित्वा का अर्थ है उसको जिलाकर, तुरंत उन्होंने जिला दिया, स्पर्श किया तो बैठ गया। श्रील प्रभुपाद जी इसमें चित्र बनवाए हैं, वो बैठ गया है बच्चा। तो दर्शयित्वा का अर्थ है कि बैठ कर, बैठा कर, जिला करके, इति हो आचल, यह इस प्रकार बोले। उस समय सभी कुटुंब के लोग, परिवार के लोग रो रहे थे बच्चे के लिए, और उनके बीच में वह भाषण करने लगा। श्रीमद् भागवत में अद्भुत कथाएं हैं। बच्चा जी गया और बोलने लगा। पहले नारद जी ने उससे कहा, जीवात्मन है, जीवात्मा तुम देखो, पश्य, तुम्हारा भद्र हो। जीवात्मन पश्य भद्रम ते, तुम आँख खोलो और बैठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने माता पिता को देखो। और देखने लगा बच्चा, पितरम मातरम, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ और सुहृद, तुम्हारे अन्य संबंधी और बांधवा और इष्ट मित्र, ये सब लोग बहुत तप्त हैं, दुखी हैं, इसलिए तुम बैठो। तो बैठ गया। श्री नारद जी ने कहा, कलेवरम स्वमाविष्य, बैठने के पहले कहा, कलेवरम स्वमाविष्य, तुम अपने कलेवर में, शरीर में आ जाओ और अपनी शेष आयु को पूरा करो। यह नियम है कि किसी की अपमृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु होती है, तो फिर उस जीवात्मा को उम्र पूरा करने के लिए दूसरा शरीर लेना पड़ता है। जो आयु निश्चित है मनुष्य जीवन में, जैसे मनुष्य 100 वर्ष जीवित रहता है, ये नियम है। अगर कोई जीवित नहीं रहा 100 वर्ष तक, तो जितना पहले वो मरेगा फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा उस अवधि को पूरा करने के लिए, दूसरा शरीर लेना पड़ता है। इसीलिए जीव हिंसा पर बहुत प्रतिबंध लगाया गया है, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी जीव की हिंसा करता है तो उस जीव को फिर उसी शरीर में, दूसरे शरीर में आना पड़ता है। किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े का जो शरीर है वो भी निश्चित अवधि से पहले मार दिए जाने पर, या किसी तरह से मर जाता है, तो उसको फिर वही उसी प्रकार का शरीर लेना पड़ता है, फिर कीट शरीर मिलेगा। और मनुष्य यदि अपमृत्यु से मर गया तो उसको फिर शरीर लेना पड़ता है। इसीलिए सिद्धांत है हमारे वैदिक संस्कृति में, एक वृक्ष को भी नहीं काटना चाहिए। आज जो वृक्ष खड़ा है, बहुत वर्षों से धूप सह करके, हवा सह करके और सीत सह करके खड़ा है, अपना कर्म फल भोग रहा है, पूरा कर रहा है, अगर बीच में उसको बिना सूखे बीच में काट दिया जाता है तो फिर वृक्ष का शरीर उसको लेना पड़ेगा, तो यह बहुत बड़ा पाप है। उस जीव को अपने जीवन अवधि पूरा कर लेना चाहिए, वो सूख जाए तब काटने का विधान है। हरे वृक्ष को काटने से पाप लगता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में अहिंसा को सबसे पहला यम माना गया। यम, यम का अर्थ है नहीं करना। जैसे शास्त्र में शब्द है विधि निषेध, विधि का अर्थ है करना और निषेध का अर्थ है नहीं करना। हम लोगों के स्कान में श्रील प्रभुपाद जी ने चार निषेध बताया है। तो श्रील प्रभुपाद जी पूछा करते थे दीक्षा के समय, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो रूल्स का अर्थ है नियम और रेगुलेशन का अर्थ है यम, निषेध। तो भागवत में कहा गया है कि नियम का पालन तो कभी कभी छूट सकता है, लेकिन यम का पालन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी देश में किसी भी काल में यम सबके लिए आवश्यक है। जो नहीं करना है तो किसी भी देश में नहीं करना है, किसी भी काल में नहीं करना है। जैसे हिंसा, हाँ हिंसा व्रत, हिंसा नहीं करनी है तो कोई बहाना नहीं कर सकता है, हम भिन्न देश के हैं, वहाँ बहुत ठंडा पड़ता है इसलिए मांस खाना जरूरी है, नहीं। हिंसा पर यह बात कही गई है, देश बदल जाए, बॉम्बे से कोई दिल्ली चला जाए या दिल्ली से कश्मीर में चला जाए या दक्षिण भारत में हो, कहीं भी हो, अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और हिंसा का अर्थ क्या है, हिंसा का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को मन से, शरीर से, वचन से कष्ट नहीं देना। इस संसार में हम आए हैं तो हमको शुद्ध जीवन जीना चाहिए, भगवान का आदेश है। और बहुत से स्मृति ग्रंथों में इस बात को बताया गया है। मनु महाराज मनु संहिता में कहते हैं, अहिंसा के विषय में, किसी जीव को काटने वाला, यहाँ तक कि मरे हुए मांस को जो काटता है या ढोता है या पकाता है खाता है और दूसरे को इंस्टिगेट करते कहता है कि तुम जीव खा सकते हो, मछली खा सकते हो, बकरा खा सकते हो, अगर कोई ये बात कहता है तो कहने वाले को, मांस को काटने वाले को, ढोने वाले को, पकाने वाले को, खाने वाले को, सबको हत्या का पाप लगता है। कभी कभी प्रश्न आता है, कोई कोई माता जी प्रश्न करती है कि मैं खाती नहीं हूँ लेकिन अब प्रभु जी के लिए पकाना पड़ता है, तो प्रभु जी अब कहाँ के प्रभु जी हैं पता नहीं। तो इस तरह से बाध्य करना अपनी पत्नी को कि या हिंसा में भाग ले यह धर्म नहीं है। तो ये पकाएगी तो उसको भी मारने का ही पाप लगेगा, बेचने वाले को खरीदने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। तो किसी भी देश में, देश मतलब स्थान में और किसी भी काल में अहिंसा को नहीं त्यागना चाहिए, यह व्रत है। तो श्रील प्रभुपाद जो निषेध किए उसमें पहला यह है, नो मीट ईटिंग। श्रील प्रभुपाद जी ने घोर कलयुग में इस बात को कहा, और वह भी अमेरिका में। अमेरिका को प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक कली का साम्राज्य यहाँ स्थापित है, और न्यूयॉर्क को कहते थे दिस इज द कैपिटल ऑफ किंग कली। कली राजा की राजधानी है न्यूयॉर्क, लेकिन न्यूयॉर्क में ही उन्होंने चार नियम प्रारंभ किया, नो मीट ईटिंग। यह यम है अहिंसा। तो किसी भी स्थिति में, चाहे ठंडा का दिन हो, चाहे गर्म हो, चाहे हम भारत में हैं, वृंदावन में हैं, बॉम्बे में हैं, या कभी दैववश इधर उधर मलेश देश आदि में जाना पड़े, पर सब जगह एक ही नियम है, नो मीट ईटिंग। खाने का नियम ये बहुत जरूरी है। हम कहीं भी जाएं हम अहिंसक बने रहें, हम मांस न खाएं। यदि मांस खाने की अनुमति भी देते हैं तो हमको उस जीव को मारने का पाप लग जाता है। नियम किसी विशेष परिस्थिति में टूट सकता है। जैसे पहला नियम है स्नान, तो स्नान किसी समय शरीर में यदि बुखार है या बहुत अधिक ठंडा है तो हो सकता है कि न नहाएं, लेकिन अहिंसा का पालन तो सब जगह करना चाहिए। किसी भी स्थिति में इसको तोड़ा नहीं जा सकता। यह हमारा धर्म है। और नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, ये सर्वत्र सार्वभौम सिद्धांत है। कहीं भी जाए किसी भी काल में, इस साल, अगला साल, या जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, कभी भी जुआ नहीं खेलना। और अवैध स्त्री संग नहीं, विवाह के अलावा, वैवाहित पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री से मन से भी कभी संपर्क नहीं करना। ये यम कहलाता है, निषेध है। कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी दशा में इसका पालन करना है। और श्रील प्रभुपाद ने बताया है सबके लिए है, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थी के लिए और सन्यासी के लिए, सबके लिए नियम है। इस्कान में भक्त बनने पर तो यह प्रश्न मुख्य ही रहता है, प्राय इसी को नियम कह देते हैं, और ठीक ही है। चार नियम क्या है ये बताना पड़ता है प्रत्येक श्रद्धालु को, तो इसको अच्छी तरह से जीवन में ग्रहण कर लेना चाहिए कि हमको कभी भी मांस भक्षण नहीं करना है, कभी मांस की अनुमति नहीं देनी है, और न तो खरीदना है, न बेचना है, न ढोना है, न पकाना है। और जुआ नहीं, इस तरह से पराये धन को बेईमानी से लेने का मतलब है जुआ न खेलना। जुआ ही केवल निषेध नहीं है, जुआ मुख्य है, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई भी उद्यम जिसमें हम दूसरे के धन को बेईमानी से लेते हैं उसे नहीं करना चाहिए। विशेष करके भक्तों को संतोष करना चाहिए, भगवान ने जो दिया है कर्मानुसार उसी धन से निर्वाह कर लेना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने चार निषेध बताया है, शास्त्रों में इसी को कुछ घटा बढ़ा करके कहा गया, छह बताया गया। यम और छह नियम, तो मैं इस पर कह रहा था, नारद जी कहते हैं कि कलेवरम स्वमाविष्य, तुम अपने शरीर में आ करके से समय सुहृद अपने स्वजनों के साथ रहो और तुम राजा के लड़के हो तो भोग भोगो पितृ प्रतान पिता के द्वारा दिए हुए राजकीय भोगों को भोगो। क्यों मर कर जा रहे हो, ये सब तुम्हारे शोक में विह्वल हैं, दुखी हैं, इसलिए तुम फिर इस शरीर में आ जाओ और जियो कुछ साल और पिता का दिया हुआ सुख भोगो, भोग भोगो। इतना सुन करके वो बच्चा बैठ गया और नारद जी के वचनों की का उत्तर देने लगा। नारद जी ने कहा कि ये तुम्हारे माता पिता बड़े दुखी हैं, तो इस पर वो कहता है, कस्मिन जन्मनि अमी मह्यम पितरो मातरो भवन कर्म भी भ्रमणस्य देव त्रियं रिजोनेसि। वो बोलता है, मैं कर्म भी अपने कर्मों के द्वारा, कर्मों के कारण बहुत बार जन्म लिया, देवताओं में, पशु पक्षी में, मनुष्यों में कई बार जन्म लिया, जन्म लेता ही रहता हूँ। कर्म भी भ्रम्यमाणस्य, मैं भ्रमण करता रहता हूँ, कभी इस जोनी में, कभी उस जोनी में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी कहाँ, कभी भारत में, कभी पाकिस्तान में, इस तरह से बार बार जन्म लिया, देवता भी बना, पशु भी बना, पक्षी भी बना और मनुष्य भी कई बार बना। ये जन्म का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, मैं बहुत बार जन्म लिया, तो किस जन्म में ये हमारे माता पिता थे, ये माता जो रो रही है किस जन्म में हमारी माता थी, किस जन्म में हमारे पिता थे, रो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, तो किस जन्म के हमारे माता पिता हैं? कर्म भीर भ्रामे माणस्य देव त्रयंग निर्जोनिषु। ये सिद्धांत है, अपने कर्मों के अनुसार जीव को जन्म लेना पड़ता है। कभी देवता में, कभी पशु में, कभी पक्षी में, और कभी मनुष्य में। तो वर्तमान समय में जिनको ये भावना है कि मैं पिता हूँ किसी बच्चे का, जिसको ये भावना है मैं माँ हूँ, तो उनको सोचना चाहिए कि क्या इसके पहले भी मैं माँ थी? नहीं। और आगे भी बनूंगी? नहीं। ये सब संबंध केवल इसी जन्म का है। कोई कहाँ पर जन्म लेगा ये तो पता भी नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरा पुत्र जहाँ जन्म लेगा मैं वहीं जन्म लेना चाहता हूँ, वहीं जाना चाहता हूँ, तो पता ही नहीं है कि वो शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जन्म लेगा और किस योनि में लेगा, किस शरीर में, कौन सा शरीर मिलेगा, किस गांव में, किस काल में, उसके जन्म का डेट क्या होगा, क्या किसी को पता है? पर जीव तो जाता ही है। जब कोई मर जाता है तो सब लोग यही कहते हैं, वो तो चले गए, चला गया शरीर का पोजेसर, शरीर का अधिकारी चला गया, शरीर तो यही रहता है, तो चला गया, कहाँ चला गया ये पता नहीं है, लेकिन चला तो गया। जो बोल रहा था, जो खा रहा था, देख रहा था, हमारी बात को सुन रहा था, तो सुनने वाला, बात बोलने वाला, देखने वाला नहीं रहा, वही है ना जीवात्मा। तो वह किसका पुत्र है? जीवात्मा ही कह रहा है, बच्चा ही कह रहा है, कस्मिन जन्मनि अमी महियम मेरे पितरो मातरो भवन। मैं तो लाखों बार करोड़ों बार जन्म लिया हूँ, 84 लाख योनियाँ हैं, इन योनियों में मैं भटकता रहा हूँ, जन्म लेता रहा हूँ, तो ये कहाँ कहाँ हमारे माता पिता बने हैं, कब कब बने हैं? अर्थात ये हमारे माता पिता नहीं है, मैं इनका बेटा नहीं हूँ। रोते हुए स्वजनों के बीच में बालक प्रवचन कर रहा, लोग ध्यान से सुनने लगे। उस समय के लिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि नारद जी जिला दिए मरे हुए बच्चे को। अगर ये सोचते हैं कि ये हमारा बेटा है, तो ये यह भी सोच सकते हैं ना कि ये हमारा दुश्मन है, क्योंकि किसी भी जगह पर कोई जन्म लेता है तो भगवान कोई नया जीव नहीं बनाते हैं। जीव कभी जन्म नहीं लेता है, न जायते म्रियते वा कदाचित। जितने जीव हैं इस ब्रह्मांड में, इस प्राकृत जगत में, बस उतने ही हैं, उनकी संख्या बढ़ती नहीं है, केवल शरीर बढ़ता है, शरीर में आ जाते हैं जीव, लेकिन जितना जीव हैं उन्हीं को पशु शरीर या पक्षी शरीर, मनुष्य का देह, ये सब मिलता रहता है। कोई नया जीव नहीं बनाया जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं न जायते मृते व कदाचित, जीव अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, कभी नहीं मरता है। इस शरीर में आ जाता है तो उसको जन्म कहा जाता है, लेकिन वास्तव में शरीर विकारी है, उसका जन्म होता है, लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता है। कदाचित नयम भूत्वा भवितावान भूय, न यह जीव कभी हुआ है न हो रहा है और न भविता होगा। इसका अर्थ है कि जीव समुदाय जब से हैं तब से बस हैं, बीच में कोई उनमें मरम्मत नहीं होती है, कोई नया आविष्कार नहीं होता है, नया नहीं बनते हैं और न आगे बनेंगे। तो जितने जीव हैं इन्हीं जीवों को भगवान इस योनि में उस योनि में भेजते रहते हैं और शरीर देते रहते हैं। आज जो हमारा मित्र है वही शत्रु के रूप में जन्म लेता है, शत्रु के शरीर में जन्म लेता है। तो सर्वे वही सर्वे साम भवन्ति कर्मशः मित्र, कोई किसी का शत्रु है तो शत्रु भी मित्र बन करके जन्म ले सकता है। इन्हीं जीवों में से आज जो मित्र है कल शत्रु हो जाता है और शत्रु मित्र हो जाता है। कोई उदासीन होता है, मध्यस्थ होता है, कोई अपने कुटुंब में जन्म ले लेता है, कोई द्वेषी के रूप में जन्म लेता है। इन्हीं सब जीवात्माओं में भगवान हेर फेर करते रहते हैं। तो बालक बोल रहा है, बंधु ज्ञात रिमध्यस्थ मित्रोदासीन विदुष सर्व एव ही सर्वे सा भवंती क्रमशो मिथा। बंधु कहा जाता है जिनके साथ मित्रता की जाती है, जो संबंध में बंध मिल जाते हैं, जैसे विवाह, विवाह द्वारा कुछ लोग अपने बंधु हो जाते हैं, ज्ञाति, और ज्ञाति अपने कुटुंब में जन्म लेने वाले लोग, ज्ञात इसी को गोतिया कहते हैं। बंधु ज्ञाति अरि, अरि का अर्थ है शत्रु, घातक, जो नुकसान करने वाला। मध्यस्थ, और मध्यस्थ उसको कहते हैं जो मध्य में है, न तो हितैषी है और न शत्रु है। बीच में है, मध्य में है, कभी अनुकूल हो सकता है, कभी प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन है बीच में। बंधु ज्ञात और मध्यस्थ और मित्र जो हित करने वाला है, सहायता करने वाला, और उदासीन जो न तो हित करता है न नुकसान करता है, उसको उदासीन कहते हैं। और विद्विषा विद्वेष जो हानि पहुंचाता है, शत्रु। सर्वयोः हि सर्वे संभवन्ति, इस जगत में सभी लोग सबके हो जाते हैं क्रमशः। इसी संसार में आज जो मित्र है कल दुश्मन के रूप में जन्म ले सकता है, और दुश्मन अपने घर में जन्म ले सकता है, वो भी बेटा बन सकता है, भाई बन सकता है। इतनी लोग चिंता करते हैं, हो सकता है कि आज हम जिससे घृणा करते हैं, कोई म्लेच्छ या जवन खास हमारे परिवार में सब भाई के रूप में, सभी पुत्रों के रूप में जन्म ले सकता है, या म्लेच्छों के घर में सनातन धर्मी भी जन्म ले सकते हैं। ये तो भगवान इधर से उधर सब फेरते रहते हैं। इतने ही जीवों को, केवल मनुष्य को नहीं, आज कोई चींटी के शरीर में है तो कल प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, और प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि कीड़े के समाज में जन्म लेंगे, कोई ठीक नहीं। एक समय इस देश का नाम अजनाहवर्ष था, और एक राजा हुए जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ गया। भरत नाम के राजा थे, दुष्यंत महाराज के पुत्र, नहीं नाभि महाराज के पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र भरत थे। और वो एक दिन एक गलती किए, एक हरिण के मोह में पड़ गए। वो महात्मा थे, भगवान के भक्त थे, जप कर रहे थे महामंत्र का, नदी के किनारे बैठे थे एकांत शिला पर, और भगवान का ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बड़े भक्त थे, राज छोड़ दिया उन्होंने जवानी में, राजा थे लेकिन राज का त्याग कर दिए, अपनी पत्नी का त्याग कर दिए, अपने पुत्रों का, और वन में चले गए भगवान का भजन करने। भजन कर रहे थे तो जिस समय ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे, उसी समय पास में जंगल में एक सिंह की दहाड़ हुई, एक हरिणी आकर के पानी पी रही थी नदी में, उसको देख रहे थे। थोड़ी ही दूर पर थी, जब सिंह का दहाड़ हुआ तो बेचारी डर गई, तो हरिणी तो ऐसे ही भयभीत रहती हैं और वो झुंड से बिछुड़ गई थी। हरिण का स्वभाव है वे सब समय झुंड में रहते हैं, लेकिन वो अकेली हो गई थी। अकेली होने से तो घबराई हुई थी और जब सिंह की आवाज़ उसने सुना तो और ज़्यादा धड़कन बढ़ गई, तो पानी पीना छोड़ दिया और वो सोची कि सिंह हमको खा जाएगा। पास में ही दहाड़ हुई थी तो वो भागने का प्रयास की, नदी की धारा को पार करना चाहिए, लेकिन छलांग मारी डर करके शेर से, तो भागना चाहिए तो छलांग लगाई नदी पार करने के लिए, लेकिन उसका बच्चा जो गर्भ में था वो गिर गया, असमय में प्रसव हो गया और वो नदी की धारा में बहने लगा। और छोटा बच्चा हरिण का नदी की धारा में बहने लगा तो राजर्षि भरत को यह देह कर दया आ गई। वो तो महात्मा थे, किसी भी व्यक्ति को दया आ जाएगी, तो दया आ गई और उन्होंने जा करके जप माला रख करके और जा करके बच्चे को धारा से निकाले। अब वो मर जाता यदि नहीं निकालते तो धारा से निकाले, निकाल करके जब तट पर लाए तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसको तो कोई कुत्ता भी खा जाएगा, भेड़िया खा जाएगा, इसको ले चले आश्रम में। तो आश्रम में ले गए, फिर उसके लिए कोमल कोमल घास जुटाते थे, उसको हमेशा सहलाते थे, अपनी गोद में लेकर सोते थे। इस तरह से करते करते उस बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई और इतनी आसक्ति हो गई कि धीरे धीरे अपना स्नान का नियम या भजन करने का नियम, जप करना आदि छूट गया, ध्यान भी छूट गया, धीरे धीरे सब नियम छूट गए। अब मृत्यु का समय आ गया, उस समय भी वे हरिण में मन लगाए थे, हरिण पास में बैठा था, उसी को देखते देखते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनका मन कृष्ण में नहीं हरिण में लगा था, तो हरिण में चित लगने से उन्हें अगला जन्म हरिण का मिला। यह सत्य कथा है श्रीमद् भागवतम में। जो उतने बड़े भक्त जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वे राजर्षि भरत हरिण में आसक्त होने से हरिण के शरीर में गए, हरिण का जन्म लेना पड़ा। अंते या मति सा गति, जो मरते समय चित्त की दशा होती है, जिसका स्मरण होता है, वैसा ही फल मिलता है। तो राजर्षि को हरिण शरीर लेना पड़ा। तो आजकल के राजा नेता ये सब, अगर क्या आश्चर्य है कि उनको मर करके आदमी का शरीर नहीं मिले, हो सकता है कुत्ता का भेड़ा का शरीर मिले या कीट पतंग मिले, ये तो स्वाभाविक है, कोई नहीं कह सकता कौन सा शरीर मिलेगा। ये सब योनियों में जीव भ्रमण करते रहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी पृथ्वी पर, कभी मनुष्य में, कभी पशु में, कभी पक्षी में, कभी कीट में। इसलिए यदि ये इच्छा हो कि हम भगवान के धाम में जाएं और ये जन्म मरण की परंपरा रुक जाए, खत्म हो जाए, इसके लिए भगवान की शरण लेना बहुत आवश्यक है। और भगवान के नाम का जप ये बहुत जरूरी है। तो बच्चा बोल रहा है चित्रकेतु महाराज का कि सर्वे भवन सर्वेशा सर्वेशम सभी के मित्र उदासीन शत्रु हितैषी आदि सब लोग होते रहते हैं। सर्वे भवन्ति सर्वेशम तो उसके कहने का आशय है कि एक बार मैं आपका बेटा बना तो मेरे लिए आप इतना रो रहे हैं, आप कई बार हमारा बेटा बने होंगे, कई बार मैं आपका बाप बना हूँ, कई बार माँ बना, लेकिन मैं तो कभी आपको पकड़ने नहीं गया और केवल एक जन्म में आपका बेटा बन गया तो हाय बेटा करके रो रहे हैं, कितनी बड़ी मूर्खता है। साफ बोल रहा है, उसके कहने का आशय है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, आप मेरे पिता नहीं हैं, और नहीं तो मैं आपका पिता हूँ, कई बार आपकी माँ बना हूँ, कई बार जानकारी केवल नहीं है आपको, लेकिन यह सत्य है कि इतना जन्म लेना पड़ा तो कभी न कभी तो आप हमारे बेटा बने हैं। तो कई बार आप हमारे बेटा बने, मैं कभी नहीं रोया, आपको पकड़ने गया, और एक बार बेटा बन गया तो आप इतना हाहाकार कर रहे हैं। यथा वस्तु निपण्यानी हेमा दीनी ततः ततः पर्यटंती नरेश एवं जीव ज्योनि सुकर्तृष। उदाहरण दे रहा है कि जीव किस प्रकार विविध ज्योनियों में जाता रहता है और जिस ज्योनि में जाता है वहाँ उसी प्रकार के जीव उसको अपना मानने लगते हैं। जिस तरह से वस्तुनी पर्ण्यानी, पर्ण्यानी का अर्थ है खरीद बिक्री करने वाली चीज, जैसे सोना, सोने की असरफी, पहले सोने का सिक्का चलता था इसीलिए उसी का उदाहरण दिया जा रहा है। पर्ण्यानी हेमा देनी, जैसे स्वर्ण मुद्रा इत्यादि, तो आज कोई स्वर्ण मुद्रा किसी के पास है, वो खरीदने जाता है कोई सामान, तो दुकानदार के पास वो स्वर्ण मुद्रा चले जाती, और वो कोई चीज़ खरीदेगा तो दूसरे को दे देगा, फिर दूसरा तीसरे को दे देगा। जैसे सोना, सोने का सिक्का, ये आजकल कागज का नोट कहिए, आज हमारे पास है तो हम मानते हैं कि हमारा है, हमारा है, वही पैसा कोई सामान ले लेने पर दूसरे के पास चला गया तो वो मानता है कि हमारा है, और तीसरे के पास चला जाता है। अगर वो पैसा किसी और के पास चला जाए और वो जल जाए, नष्ट हो जाए, तो शोक नहीं होता। जब तक ये मानते हैं कि ये पैसा हमारा है, अगर जल जाए या चोरी हो जाए गीला हो जाए पानी से तो शोक होता है। जैसे जैसे स्वर्ण मुद्रा या नोट पैसा घूमते रहते हैं कितने नोट तो घूमते घूमते सड़ जाते हैं ना, लेकिन जीव मरता नहीं है सड़ता नहीं है। इसलिए उदाहरण दिया गया स्वर्ण मुद्रा का, यथा पर्ण्यानि यथा वस्तूनि पर्ण्यानि हेमा दिनी ततस्ततः ततस्ततः। ये स्वर्ण मुद्राएं घूमती रहती हैं, हजारों जगह घूम आती हैं, मतलब हजारों लोग व्यवहार करते हैं, जिसके पॉकेट में गया वो मानने लगता है मेरा है, जिसके पास गया वो मानता है मेरा है। तो इसी तरह से जीव विविध योनियों में घूमता रहता है, आज यहाँ जन्म हुआ इसके घर में, कल दूसरे के घर में, कल पशु में, फिर पक्षी में, फिर कीट में, पतंग में, इस तरह से जीव जाता रहता है, योनि बदलती रहती है, शरीर बदलता रहता है, और जिस शरीर में जिस योनि में जाता है वहीं के लोग उसको मानते हैं मेरा है मेरा है। तो मैं तो बहुत बार जन्म लिया, कभी देवता बना, कभी पशु पक्षी बना, कभी मनुष्य बना, पर आपके साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि मैं कहाँ गया, कहाँ जन्म लिया हूँ। तो इसलिए ये रोना ठीक नहीं है, जो शोक कर रहे हैं यह बहुत बड़ी मूर्खता है। आपके शत्रु के रूप में भी जन्म लिया हूँ मैं, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा शत्रु पहले का मर गया। तो सब मिला करके शोक नहीं करना चाहिए, ये वो शिक्षा दिया। नित्यस्यार्थस्य संबंधो या नित्य दृश्यते निर्सु, नित्य जो अर्थ है, नित्यस्य अर्थस्य संबंध और नित्य दृश्यते निर्सु, नित्य रहने वाली अर्थात अधिक दिन रहने वाली वस्तु के साथ भी मनुष्य का संबंध नित्य नहीं रहता है, अनित्य रहता है। जैसे भूमि, भूमि तो अस्थिर रहती है, लेकिन इस भूमि पर जो संबंध है मनुष्य का बदलता रहता है, अनित्य। नित्य वस्तु है लेकिन नित्य वस्तु पर भी संबंध बदलता रहता है। जमीन बिकती रहती है दूसरे के नाम पर और दूसरा लेता रहता है, फिर कभी वह बेचता है दूसरा उसका अधिकारी हो जाता है ना। जमीन वही है लेकिन इस पर अधिकार बदलता है, नाम बदलते ही संबंध ममता भी बदल जाती है। जब तक संबंध रहता है तब तक ममता रहती है कि मेरा है, और संबंध समाप्त हुआ तो ममता भी समाप्त हो जाती। पशुओं के खरीद बिक्री में हम लोग स्पष्ट इस बात को देखते हैं। आज कोई पशु किसी का है, मानता है ये मेरा पशु है, मेरा बैल है, मेरा घोड़ा है, लेकिन वही बेच दिया तो दूसरा उसको अपना मानने लगता है जो खरीदा है। एक बार की सच्ची घटना मैं सुना रहा हूँ। हमारे गांव में एक व्यक्ति ने अपना बैल बेच दिया तो, और वो बैल उसी दिन शाम को अपने मालिक के यहाँ, जो पहले बैल रखा था, उसके घर आ गया। और घर में कुछ पीने लगा, नाद कहते हैं, घर में रहता है तो पानी पीने लगा। तो वहाँ माता जी कहती है, ये कौना के बैल आई रे, 12 वर्ष आज ही बेचा गया है, लेकिन अब ममता उसमें नहीं रही। वो कहती, कौना के बैल आज, किसका बैल है? बैल उसी का था लेकिन आज बेच दिया गया, तो उसको पानी पीने नहीं दिया, ममता नहीं रही। जब तक संबंध है तभी तक ममता है, संबंध नहीं है तो ममता भी नहीं। तो जिस योनि में जीव जाता है वहीं उसके संबंधी मिल जाते हैं, चाहे शत्रु, चाहे उदासीन, चाहे मित्र बन करके। सब शरीर में सबके मित्र होते हैं ना। यदि कुत्ता का शरीर मिलता है व्यक्ति को, आत्मा को, तो कुत्ते की भी दोस्ती रहती है ना कुछ कुत्तों से, तो अपने आप मिल जाते हैं मित्र, और शत्रु भी मिलते हैं। कुछ कुत्ते बिना मतलब के काटने दौड़ते हैं तो शत्रु भी मिल जाते हैं सभी योनियों में। इसलिए राजकुमार कह रहा है, सर्वे, सभी लोग हो जाते हैं सर्वे शाम, सबके लिए। यदि पक्षी के शरीर में जीव चला गया तो वहाँ भी कुछ पक्षी मित्र होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं और कुछ शत्रु होते हैं। पक्षियों में भी बहुत झगड़ा होता है। आप लोग देखे होंगे पक्षी भी लड़ते रहते हैं, लड़ते लड़ते थक करके गिर जाते हैं। छोटे छोटे पक्षी जैसे गौरैया है, उनमें भी झगड़ा देखा गया है। किस लिए? खोता बनाने के लिए। हमारे मंदिर में मैंने देखा है, गांव पर वो नीड बनाने के लिए, खोता लगाने के लिए झगड़ा करते हैं, झगड़ा करते करते ऊपर से गिर जाते हैं। सब जगह सबके शत्रु मिलते हैं, और शत्रु कोई दूसरे जीव नहीं बनाए जाते, इन्हीं जीवों में से कोई न कोई शत्रु के रूप में हो आ जाता है, बन जाता है। एक बार की कथा है कि विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ जी से झगड़ा किए। विश्वामित्र मुनि एक राजपूत थे, लेकिन वो चाहते थे कि हमको ब्राह्मण घोषित किया जाए। बहुत तपस्या किए, बहुत प्रयास किए कि हमको ब्राह्मण बना दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि अब तो तुम क्षत्रिय में जन्म लिए हो, लेकिन तुमको ब्राह्मण तब माना जाएगा जब ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ वशिष्ठ जी तुमको ब्राह्मण कह देंगे। तो वशिष्ठ जी के पास आए विश्वामित्र जी। विश्वामित्र एक राजा थे और वशिष्ठ जी सूर्यवंश के पुरोहित थे। आकर के विश्वामित्र जी ने कहा कि आप हमको ब्राह्मण घोषित करो, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ब्राह्मण का कोई गुण आप में नहीं है, आप तो मार काट करते हैं, क्षत्रिय हैं, तो मैं कैसे आपको ब्राह्मण कह दूं? या नहीं कहोगे तो गुरु वशिष्ठ जी डरने वाले व्यक्ति नहीं, तो कहा कि नहीं, मैं नियम के विरुद्ध नहीं कर सकता, आप में ब्राह्मणत्व का गुण आ जाएगा तब आपको ब्राह्मण कहूँगा, ऐसे नहीं। तो इस पर विश्वामित्र जी ने इनके साथ झगड़ा किया और यहाँ तक कि इनके 100 पुत्रों को काट दिया। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, उनको काट दिया, मार दिया, पर फिर भी वशिष्ठ जी इनको ब्राह्मण नहीं कहे। ब्राह्मण का लक्षण थोड़े था हत्या करना, मार काट करना। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में युद्ध होने लगा। वशिष्ठ जी के पास ब्रह्म तेज था और विश्वामित्र जी के पास अस्त्र शस्त्र थे, क्षत्रिय थे, तो उन्होंने बहुत बल लगाया, लेकिन गुरु वशिष्ठ के ब्रह्म तेज के आगे उनका सब फीका हो गया। अंत में पक्षी बन करके विश्वामित्र जी युद्ध करने लगे और गुरु वशिष्ठ भी पक्षी बन करके उड़ करके युद्ध करने लगे। पक्षी के युद्ध पर मुझे बात याद आ गई, बहुत वर्ष तक युद्ध हुआ। अंत में विश्वामित्र मुनि हारते गए, तब उन्होंने सोचा कि अब वशिष्ठ को कत्ल करना चाहिए, ये हमको ब्राह्मण नहीं कह रहा है तो इसका वध कर देना चाहिए। तो वध करने के लिए वे संकल्प कर लिए और हाथ में तलवार लेकर के गुरु वशिष्ठ जी की कुटिया पर गए। गुरु वशिष्ठ जी उस समय सोए नहीं थे, कुटिया के बाहर एक चबूतरे पर बैठे थे, चांदनी रात थी, वे अपनी पत्नी अरुंधति से बात कर रहे थे। तो अरुंधति जी ने कह दिया कि कितना सुंदर प्रकाश है चंद्रमा का, कितना प्रकाश फैला हुआ है, और विश्वामित्र सुन रहे थे छिप करके पेड़ की आड़ में। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि चंद्रमा उसी तरह से प्रकाश दे रहा है जितना विश्वामित्र मुनि अपनी तपस्या से प्रकाशित हो रहे हैं। विश्वामित्र जी तपस्या करते थे कि हमको ब्राह्मण बना दिया जाए, ब्राह्मण बना दिया जाए, पर गुरु वशिष्ठ नहीं कहते थे। अंत में उस दिन जब हत्या करने के लिए गए थे तो विश्वामित्र मुनि की प्रशंसा वशिष्ठ जी कर रहे थे अपनी पत्नी से एकांत में कि चंद्रमा का प्रकाश वैसे ही फैला हुआ है जैसे गुरु विश्वामित्र जी का तपस्या का प्रकाश। तो यह बात सुन करके विश्वामित्र को बहुत ग्लानी हुई, कितना महान है ये वशिष्ठ जी जो एकांत में अपनी पत्नी से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि हत्या करना उचित नहीं है, तलवार फेंक दिया और आकर के चरण में गिर गए। विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी के चरण में गिरे तो वे आवाज पहचानते थे। पहले उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत अपराधी हूँ। तो आवाज पहचान गए गुरु वशिष्ठ जी के, विश्वामित्र जी की आवाज़ है। तब वे उनको उठाए और कहे, उठिए ब्रह्मर्षि जी, अब आप ब्राह्मण हो गए, इसके पहले आप क्षत्रिय थे, अब ब्राह्मण का गुण आप में आ गया। तो मैं जो पक्षी का उदाहरण दिया कि सब शरीर में सबके शत्रु होते हैं, तो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का युद्ध पक्षी के रूप में हुआ था, तो उसी की याद आ गई। सर्वे और सर्वेशम शब्द का प्रयोग है, सबके शत्रु मित्र संबंधी आदि सब लोग हो जाते हैं। कई बार हम किसी के पुत्र बने, कभी पिता बने, कभी माँ बने और कभी शत्रु बने, सभी योनियों में आते जाते रहते हैं। इस शरीर में भी बहुत काल तो रहना नहीं है, कुछ वर्षों में शरीर पूरा हो जाएगा और आत्मा जाएगा दूसरे शरीर में। इस तरह से ज्ञान दिया वो बच्चा, तो उसके ज्ञान को सुन करके, उसके प्रवचन को सुन करके सब लोगों को वैराग हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, इति उदीर्य ततो जीवो ज्ञाते अस्तस्ते तदा। उसके परिवार के लोग बड़े विस्मित हुए, एक तो यह बात कि मरा हुआ लड़का जी करके आ गया, और जिया तो बहुत बड़ा ज्ञान का उपदेश किया। तो उन लोगों की जो ममता थी, स्नेह था उस बच्चे में, जो सब दुख का कारण था, उस ममता को छोड़ दिए। वो कह करके और इसके बाद पुनः मर गया, वो जीवात्मा चला गया। विस्मिता ममुचु स्नेह, लोग विस्मित हो गए, कभी ऐसा सुने नहीं थे कि कोई मर करके फिर जिया हो। के प्रभाव से वो बच्चा इस तरह से प्रवचन किया, तो वो लोग उसके साथ जो ममता का बंधन रखे थे, जिसके कारण बहुत शोक था, चित्तात्मा स्नेह श्रृंखला, जो मन का इस तरह से बंधन था, बहुत कड़ा बंधन, सब लोग छोड़ दिए, ममता से मुक्त हो गए। और उस बच्चे को ले जा करके जलाए, निहृत ज्ञाते देह चिता किया, फिर बच्चे का दाह संस्कार किए, और उसके बाद जो क्रिया की जाती है सब क्रिया किए, और उन स्त्रियों को अब बहुत बड़ी लज्जा आई, जिन स्त्रियों ने मिल करके उस बच्चे को विष दिया था, वे लोग स्वयं ही अब कहने लगे कि हमने अपराध किया या किया। वे लोग डर गए कि ये तो पहुंचे हुए साधु हैं, अंतर्जामी हैं, जब बच्चे को जिला दिए तो हम लोगों के पाप को भी जानते ही होंगे। तो उन लोगों ने स्वयं ही कह दिया नारद जी से कि हमसे पाप हो गया है, ये पाप से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। रोने लगी, तो संत महात्मा स्वाभाविक दयालु होते हैं, और उन्होंने सोचा कि इन लोगों से गलती हो गई, ये स्वाभाविक है संसार में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बाल हत्या व्रत है, मतलब बाल हत्या से छुटने का व्रत, उसको करो। वो सब करने लगी। सबसे पहले जमुना जी में जा करके स्नान की और व्रत करने लगी, उपवास करना, भगवान का जप करना इत्यादि वो करने लगी। बाल हत्या करने से उनका तेज फीका हो गया था। बाल हत्या हत्या प्रभा, उनका उनकी प्रभा, उनका तेज खत्म हो गया था, सुंदरता खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने व्रत किया, उस पाप से मुक्त हो गए। तो बालक के इस प्रवचन को सुनकर चित्रकेतु महाराज समझ गए कि वास्तव में इस जगत में किसी भी जीव के साथ किसी का कोई नित्य संबंध नहीं, ये भ्रम है। सैथम प्रतिबुद्धात्मा, चित्रकेतु महाराज को ज्ञान हो गया, वे प्रतिबुद्ध हो गए। उनको ज्ञान हो गया। ये उसी दिन घर गृहस्थी छोड़ करके नारद जी की शरण में आ गया। सुखदेव जी उदाहरण देते हैं, जैसे सरह पंखा दिव दिवा, जैसे हाथी किसी सरोवर के कीचड़ में धस गया हो और निकल नहीं रहा हो, ऐसे राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के बंधन में धस बंध गए थे। हाथी बड़ा बलवान जीव है, लेकिन यदि उसके शरीर के बराबर कोई कीचड़ हो उसमें धस जाए तो निकलना कठिन है, नहीं निकल पाता। तो घर गृहस्थी का बंधन बहुत बड़ा बंधन है, इसमें पढ़ करके जीव दुखी रहता है, मनुष्य दुखी रहता है, लेकिन छूटता नहीं है। परंतु नारद जी और अंगिरा जी के संग से चित्रकेतु महाराज घर गृहस्थी के बंधन से निकल गए। जैसे हाथी नदी या सरोवर के कीचड़ से निकल जाता है, उनको बड़ी प्रसन्नता है। राजा थे लेकिन राज करते समय वे सुखी नहीं थे, रो रहे थे, और जब राज छोड़ दिए, गृहस्थी का त्याग कर दिए, तब उन्हें वास्तविक सुख मिला। कोई हाथी अगर पंख से निकल जाए कीचड़ से जिसमें वो धंसा हुआ था तो उसको कितनी खुशी होगी। इसी प्रकार से राजर्षि चित्रकेतु को प्रसन्नता हुई और वो भी जाकर जमुना जी में स्नान किए। तो मथुरा कहीं थे तो श्री जमुना जी में स्नान किए और स्नान करने के बाद नारद जी के शरण में आए। नारद जी ने देखा यह सच्चा जिज्ञासु है राजा, वह राजा जो संपूर्ण पृथ्वी का राजा था, कोई एक प्रदेश कोई जिला आदि का नहीं, संपूर्ण भूमंडल का राजा था, चक्रवर्ती राजा, वह भगवान का भक्त हो गया। तो आकर के उसने नारद मुनि को प्रणाम किया, प्रपन्न हुआ अथ तस्मै प्रपन्नाय। भक्ताय प्रतात्मने, नारद जी ने उसको विद्या दिया, विद्या का उपदेश किया, वो विद्या यहाँ दी गई है। क्योंकि वह प्रपन्न था, शरण में आया हुआ था, राजा हो करके इतना बड़ा है, और फिर भी नारद जी के शरण में आया, गिर गया शरण में, प्रपन्न था। और संयतात्मा ने अपने मन को वश में करके आया, अपने इंद्रियों को समाहित किया, मन को समाहित किया, और संपूर्ण हृदय से शरण में आया। अथ तस्मै प्रपन्नाय विद्याम एतामुहात, अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रेतात्मने। चित्रकेतु महाराज नारद जी के शरण में आए, वे भक्त थे और संयतात्मा थे, उनका मन बस में था, एकाग्र था, मन को एकाग्र करके शरण में आए, भक्त थे, इस कारण से नारद जी ने उनको प्रसन्नता से यह विद्या दिया, एतम विद्या जो आगे कही जा रही है। यही है विद्या, यही है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान की स्थिति में भगवान को प्रणाम करना चाहिए, पहला ज्ञान है। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रदुम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये ज्ञान का प्रारंभ, विद्या का प्रारंभ। नमस्तुभ्यं भगवते, हे छह ऐश्वर्यों से युक्त, हे प्रभु, हे परब्रह्म भगवान, आपको प्रणाम है। आप वासुदेव को प्रणाम है, प्रद्युम्न को प्रणाम है, अनिरुद्ध को प्रणाम है, और संकर्षण को प्रणाम है। एक ही भगवान इस प्राकृत जगत को चलाने के लिए चार रूप में अपने को व्यक्त किए हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये भगवान के काय व्यूह रूप है, भगवान के एक्सपेंशन है। तो संपूर्ण जगत में सारे जीवों को चेतना देने का काम भगवान वासुदेव करते हैं। ये चार चीज है, चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। तो चित्त यही मुख्य चीज है, चेतना, चित्त का अर्थ चेतना। यह जगत भौतिक पदार्थों से बना है, इसमें कोई जीवन नहीं है, चेतना नहीं है, लेकिन भगवान चेतना देने के लिए वासुदेव के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। हृदय में भगवान हैं, इसलिए शरीर में चेतना है, जड़ शरीर है, लेकिन फिर भी ये हाथ काम करता है, पैर काम करता है, कान काम करता है, इंद्रियां भी जड़ हैं, उनमें कोई अपनी चेतना नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पास जो मस्तिष्क है सभी जीवों में, ये भी एक भौतिक पिंड है, एक पदार्थ है, इसमें चेतना नहीं है। लेकिन ये भगवान की विशेषता है कि सभी जीवों में वे चेतना देते हैं, चेतना के रूप में, और तब ब्रेन काम करने लगता है। और वही भगवान वासुदेव फिर अपने को प्रद्युम्न के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रद्युम्न सबके बुद्धि के नियामक हैं, सबके पास कुछ न कुछ बुद्धि है, और बुद्धि का काम है हित अहित का निर्णय करना है। इस काम में हमारा हित है, इसमें अहित है, इसको बताना है, ये बुद्धि का काम है। तो इसमें प्रार्थना है प्रद्युम्न भगवान से कि हे प्रभु, आप हमारी बुद्धि को शुद्ध कीजिए, इतना निर्मल बनाइए कि इसके द्वारा हम ठीक ठीक निर्णय कर सकें, जीवन का सार क्या है, किस काम में हमारा हित है, किस काम में हमारा अहित है, इसका ठीक ठीक निर्णय कर सकें। यदि भगवान प्रद्युम्न हमारी मदद करते हैं तब हम ठीक से निर्णय कर पाएंगे। तो इसी के लिए भगवान अपने को अनिरुद्ध प्रद्युम्न के रूप में व्यक्त करते हैं, समस्त जीवों के बुद्धि को वही चालित करते हैं। एक चींटी में भी कुछ बुद्धि है, और ब्रह्मा जी में भी बुद्धि है। ब्रह्मा जी विश्व की रचना करते हैं, सबके पास बुद्धि है, मनुष्यों में भी सबके पास बुद्धि है, एक कुत्ता में भी बुद्धि है, तभी न वो रोड पर चलते समय बचता चलता है कि इधर चलूँ नहीं तो इधर जाऊँगा तो धक्का लग जाएगा। बुद्धि सबके पास है, परंतु बुद्धि का सच्चा निर्णय क्या है? सच्चा निर्णय यह है कि बुद्धि इस बात को समझने लगे कि यह संसार क्षणभंगुर है, बहुत दिन नहीं रहेगा, और शरीर नश्वान है, इस शरीर को पा करके भगवान को समझना चाहिए, भगवान का नाम गाना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का प्रसाद खाना, ये निर्णय अच्छा निर्णय है। तो इसमें नमः नमः कई बार आया है कि हे वासुदेव, हे प्रद्युम्न, आपको नमस्कार है, हमारी बुद्धि को इतना निर्मल कीजिए कि हम इसे ठीक ठीक निर्णय कर पाए, हम संसार के भोगों में न पड़े, काम क्रोध लोभ आदि में न पड़े, हमारी बुद्धि निर्मल हो, बुद्धि द्वारा हम आपके चरण कमल को समझ जाएं। गीता में भगवान कहते हैं मैं ये व मन आधत्सव मैं बुद्धि निवेश है, मुझ में बुद्धि को लगाओ, बुद्धि से यह निर्णय करो कि संसार सत्य नहीं है, सत्य है भगवान, और भगवान परम दयालु है, परम ऐश्वर्यवान है, सर्वज्ञ है, वे थोड़ी से सेवा को बहुत मान लेते हैं, अतः हमें भगवान का भजन करना है, ऐसा निर्णय होना है, सच्चा निर्णय। सबका सूर्योदय होता है, सबकी रात्रि समाप्त होती है, दिन आता है, तो रात्रि बीतते ही सबसे पहले कौन काम करना चाहिए, सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर यदि संभव है, मंदिर निकट में है, तो स्नान करके भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। भगवान के भक्तों का दर्शन होता है, भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है, और भगवान का मधुर पावन नाम सुनने को मिलता है, और कीर्तन का अवसर मिलता है। तो यह सच्चा निर्णय है बुद्धि का। और सोए रहना, आलस्य में होना, या सांसारिक चर्चा करना, ये सब मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। तो चित्रकेतु महाराज को सिखा रहे नारद जी कि इस तरह से भगवान प्रद्युम्न से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बुद्धि को निर्मल बनाएं। और अनिरुद्धाय नमः, और भगवान अनिरुद्ध को नमस्कार है, धीम ही ध्यान करता, प्रणाम और ध्यान। अनिरुद्ध भगवान मन के कंट्रोलर, जितने जीव हैं उन सबके मन में दो तरह की वृत्ति उठती है, संकल्प और विकल्प। संकल्प का अर्थ है इसको करना है, इसको पाना है, ये हमारे, इसको मैं पसंद करता हूँ, और जिसको हम पसंद नहीं करते हैं उसको कहते हैं विकल्प। तो मन का स्वभाव है हमेशा संकल्प करता रहता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, ये मन का काम है। निर्णय करना बुद्धि का काम है, लेकिन पसंद और नापसंद करना ये मन का काम है। तो हे भगवान अनिरुद्ध, आप हमारे मन को अपने चरण कमल में लगा लीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे मन में आपके भक्ति का ही संकल्प उठे, और भक्ति विरुद्ध कार्यों में हमारा कभी मन न लगे। व्यक्ति कुछ न कुछ विकल्प तो रखता ही, हमको ये नहीं करना है, हमको ये जरूर करना है। तो भगवान के नाम जप का संकल्प होना चाहिए, और विकल्प जैसे मांस नहीं खाना, या बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, दूसरे के धन को विष समझना, दूसरे का धन हमारे लिए जहर है, इस प्रकार का संकल्प मन में उठना चाहिए। विकल्प नहीं, जब भी मन में सोचने की बात आए तो भगवान को पसंद करना चाहिए। जब भी कुछ पढ़ने का मौका मिले तो भगवत साहित्य पढ़ना चाहिए, कभी गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, जिससे कि हमारा मन भगवान में लगे। यदि भगवान अनिरुद्ध चाहेंगे तो मन लग जाएगा भगवान में, वो हमारे मन की वृत्ति को हर लेंगे। संकर्षण से प्रार्थना है, आप हमारे अहंकार को शुद्ध कीजिए, हमारे अहम को। अहंकार में दो चीज है, अहंता और ममतास्पद, अहंता ममता। हमारे अंदर यही अहम होना चाहिए, शुद्ध अहम, कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा करना ही हमारा स्वरूप है, ये शुद्ध अहंकार है। तो संकर्षण देव की कृपा से ये अहम हो सकता है, अन्यथा भगवान की कृपा नहीं होने पर हम इस देह को मैं मानते रहते हैं। ये देह मैं हूँ और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, मैं और मेरा, यही है अहंकार। मैं क्या हूँ, व्यक्ति यही सोचता है मायाबद्ध जीवन में कि मैं देह हूँ और देह से संबंधित स्त्री पुत्र घर संबंधी सब मेरे हैं। और जैसा अहंकार होता है उसी के अनुसार मनुष्य काम करता है, इसीलिए शुरू में ही अहंकार को शुद्ध करना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी या अन्य सब वैष्णव आचार्य दीक्षा देते हैं तो नाम में शुद्ध अहंकार डालने के लिए नाम में जो और सब उपाधियां लगी होती हैं उनको हटा देते हैं और पुरुषों के नाम में दास टाइटल देते हैं, भगवान का कोई नाम और उसके पीछे दास, विष्णु दास या हरि दास, कृष्ण दास, इस तरह से लगाते हैं, जिससे कि जीव को, मनुष्य को ये अभिमान हो, ये अहंकार हो कि मैं भगवान का दास हूँ। जब यह वृत्ति आती है तभी हम भजन कर पाएंगे। सबको फाल्स ईगो ने, अहंकार ने बांध रखा है। हम सोचते हैं हम यह देह हैं और हमारे लिए ये काम जरूरी है तो उस काम को करते हैं, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हम भगवान के दास हैं तो ऐसा काम करने लगते हैं। इतने लोग श्रीमद् भागवतम सुनने आए हैं क्यों, ये भावना है कि हम भगवान के हैं, इसलिए भगवान की बात हमको सुननी है। यदि भगवान से जुड़े रहेंगे तो भगवान का काम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का जप करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। लेकिन अहंकार की स्थापना करनी चाहिए, शुद्ध अहंकार, हम देह नहीं हैं, हम भगवान के शुद्ध सनातन अंश हैं, अतः हमारा स्वाभाविक कार्य होना चाहिए भगवान की सेवा। हमारा खाना पीना, हमारा सोचना, हमारा बोलना, सब कुछ भगवान से युक्त होना चाहिए। इसके लिए भगवान संकर्षण से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण ही चारों रूप में हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वही हैं, वही सबके हृदय में निवास करते हैं, वही बुद्धि देते हैं, वही मन को चालित करते हैं और अहंकार को। तो हमारा अहंकार शुद्ध होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा मन शुद्ध होगा, फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इस तरह की प्रार्थना है। और नारद जी ये जो उपदेश किए यही है सच्ची विद्या, सच्चा ज्ञान। भगवान को प्रणाम करना और भगवान से प्रार्थना करना, यही है सच्चा ज्ञान, सच्ची विद्या। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रदुम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये। मात्रा का अर्थ होता है स्वरूप, विज्ञान मात्राय। हे भगवान, हे प्रभु, आपका स्वरूप जो है वो बिल्कुल ज्ञानमय है, चिन्मय है। परमानंद मूर्तये, आपकी मूर्ति, आपका शरीर परमानंदमय है। भगवान नख से सिख तक केवल आनंद से ही परिपूर्ण है, घनीभूत आनंद। इसीलिए भगवान कृष्ण को कोई कभी खिन्न नहीं देखता है, वो आनंद से परिपूर्ण है। जैसे सूर्य दाहिका शक्ति से युक्त है, तेज से युक्त है, चारों तरफ प्रकाश बिखरता रहता है, तो भगवान कृष्ण से आनंद निकलता रहता है। आनंद की ये मूर्ति है परमानंद। जीव दुख की मूर्ति हो गया है। जीव का शरीर भौतिक है, तो इस शरीर में रोग दुख आदि लगे हुए हैं, चिंता लगी हुई है, लेकिन भगवान परम आनंदमय है। परम आनंद, जो आनंद कभी समाप्त नहीं होगा और जिसमें दुख नहीं मिला है, वो है परम आनंद। और भगवान आनंद के स्वरूप हैं, आनंद की मात्रा हैं। और मायाबद्ध जीव तो दुखमय शरीर से घिरा हुआ है, यह जड़ शरीर है। शरीर समाप्त होता है, शरीर क्षीण होता है, कट जाता है, जल जाता है, लेकिन भगवान का शरीर नित्य है। भगवान कृष्ण के शरीर में कहीं कोई कटा हुआ चिन्ह नहीं है। प्रकट लीला में भी जब भगवान 90 वर्ष के थे, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भगवान की अवस्था 90 साल की थी, लेकिन फिर भी वे पूर्ण युवक थे। और जो भी देखता था वो आनंद में मग्न हो जाता था। भगवान कृष्ण का खिन्न चित्र कहीं नहीं है, कहीं चिंता में हो, टेंशन में हो, आनंद में रहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करेगा, उनका भक्त बनेगा, उनका नाम जप करेगा, तो वह भी आनंदमय हो सकता है। उनका पार्षद बन करके उनके धाम में जाएगा, आनंद में परिपूर्ण हो जाएगा। आत्मा रामाय शांताय निवृत्त दृष्टय। आत्मा राम, भगवान अपने में रमण करते हैं, उनको सुख पाने के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं हो जो उनसे बाहर हो। उनका शरीर इतना आनंदमय है कि उसी आनंद को भोगते रहते, उसी में रमते हैं। अब उनको कोई जरूरत नहीं है कि बाहर का तमाशा देखें, बाहर की वस्तु लें तब सुखी होंगे। वे स्वयं आनंद हैं, इसीलिए अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं। आत्मा राम, आत्मनि आरमते इति आत्मा राम। हम लोगों में से कोई आत्मा राम नहीं हो सकता है। आत्मा राम कोई कहे अपने को तो कहे कि आज से पानी मत पियो। जो पानी के बिना वो जी नहीं सकता है, भोजन के बिना जी नहीं सकता है। और कह दिया जाए कि आत्मा राम हो तो हवा से सांस मत लो, आत्मा में रमो, तो क्या बेचारा रमेगा? दो मिनट नाक बंद कर देने पर वो आत्मा राम के गंतव्य पर पहुंच जाएगा। लेकिन भगवान इतना परिपूर्ण है, इतना आनंदमय है कि उनको किसी बाह्य वस्तु की जरूरत नहीं है आनंदित होने के लिए। आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्ट है और शांत है। भगवान कभी टेंशन में नहीं है, कभी चिंता में नहीं है, शांत है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर कुछ ऋषि जन जग कर रहे थे, तो उन्होंने यज्ञ में पूजा के लिए निर्णय करना चाहा कि कौन सबसे श्रेष्ठ देवता है, पूजा करनी चाहिए उनकी। तो उन लोगों ने सर्वसम्मति से महर्षि भृगु जी को नियुक्त किया कि आप पता लगाइए कि सबसे श्रेष्ठ तो तीन देवता हैं, भगवान विष्णु, श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव। तो इन तीन में से सबसे श्रेष्ठ कौन है इसका पता आप लगा करके आइए। तो भृगु जी चले परीक्षा लेने तीनों की। तो उन्होंने कहा कि ऋषियों से कि जिस व्यक्ति में परम शांति होगी वही सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें कोई क्रोध नहीं, टेंशन नहीं, चिंता नहीं, वो सबसे श्रेष्ठ होगा। तो इसकी परीक्षा लेने के लिए वे सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारा बेटा आया है, बहुत बड़े ऋषि हैं भृगु जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि आ रहा है तो बहुत दिन के बाद आ रहा है और प्रणाम करेगा। तो ब्रह्मा जी ने ये इच्छा किया कि हमें यह प्रणाम करेगा, लेकिन भृगु जी को तो आज परीक्षा लेनी थी, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया सभी ऋषियों के सामने, ऐसे बस खड़े के खड़े रह गए। इसी व्यवहार से ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, लेकिन दूसरे क्षण फिर अज्ञान आया, दूसरा अज्ञान कि यह मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया है, नहीं प्रणाम किया तो क्या हो गया। तो पुत्र समझ करके क्रोध को प्रकट नहीं किए, लेकिन भीतर से क्रोध आ गया कि कैसा नालायक बेटा है, प्रणाम नहीं कर रहा है। भृगु जी उनके मनोभाव को तुरंत समझ गए, क्योंकि ब्रह्मा जी समाचार नहीं पूछे, कैसे हो बेटा, कहाँ से आए, क्या हालचाल है, कुछ पूछे नहीं। नहीं पूछे तो ये समझ गए कि क्रोध में है। इसके बाद कैलाश गए भगवान शंकर का परीक्षा, उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान शंकर उस समय वट वृक्ष के नीचे ऋषि मुनियों की सभा में बैठे थे। तो उन्होंने सोचा भृगु जी को देखकर कि मेरा भाई आया है तो इसका स्वागत करना चाहिए, तो उठ करके चले भगवान शिव भृगु जी का आलिंगन करने के लिए, क्योंकि भाई हैं। तो भृगु जी निकट आकर कहते हैं, प्रणाम करते हुए मिलते हुए जब देखे श्री शंकर जी को तो कहते थे, चल हट लच्छ कहीं के, कभी स्नान करता है, कभी जटा बढ़ाया है, हड्डी की माला पहना है, तो स्नान नहीं करता है, अशुद्ध, तुम अशुद्ध शरीर से मुझको मत छुओ, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ, इतना गंदा देह लेकर के हमको मत छुओ, अभी लगता है तुम श्मशान से आए हो। तो इतना सुनते हैं शिव जी पूरा क्रोध में हो गए और उनको मारने के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर के चल, जान मारने के लिए। जान मारने के लिए आंख लाल लाल करके भगवान शंकर चले, लेकिन पार्वती जी चरण पर गिर करके मनाई कि छोड़ दीजिए, आप इनकी हत्या मत कीजिए। तो किसी तरह मान गए, उसमें क्रोध से हाँफ रहे थे शंकर जी कि आज इसको नहीं छोड़ूंगा, ये भरी सभा में हमारा इस तरह अपमान किया। तो भृगु जी परीक्षा ले लिए चले गए, ये धैर्य की परीक्षा हो रही थी, कौन व्यक्ति पूर्ण है, जो पूर्ण है सब तरह से वो क्रोधित नहीं हो सकता है, इसमें धैर्य बना रहेगा। तो दो परीक्षा ले लिए, इसके बाद वे वैकुंठ गए। तो उस समय भगवान से सज्जा पर शयन किए थे, लेटे थे, और माता लक्ष्मी जी भगवान का चरण दबा रहे थे। तो जाते ही भृगु जी भगवान के वक्षस्थल पर लात मारे, लेकिन भगवान तुरंत बैठ करके और भृगु जी का चरण सहलाने लगे, आपके चरणों में चोट लग गई होगी, हमें माफ कीजिए, आपके आने की सूचना नहीं थी इसीलिए मैं आपका स्वागत नहीं किया, तो आप तुलना कीजिए, धैर्य किसमें है, शांति किसमें है, कौन सबसे पूर्ण है। तो आए भृगु जी, सब घटना ज्यों का त्यों सुना दिए। तो ऋषियों ने मान लिया कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े हैं, सबसे पूर्ण हैं, जो पूर्ण होगा वो अपने आप में रमेगा ना, उससे अन्य किसी के सत्कार की किसी के तिरस्कार की क्या हो सकता है, उससे क्षोभ नहीं हो सकता है। तो भगवान क्रोध करना तो दूर रहा, उल्टे भृगु जी का चरण सहलाने लगे। तो वास्तव में यही भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें भागवतम में ये घटना दी गई है और भृगु जी ने परीक्षा लिया था। तो भगवान सब तरह से परिपूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है। अपार धैर्य है, अपार शांति है, कोई कामना नहीं है। दूसरे लोगों में कामना है, ब्रह्मा जी में कामना थी कि हमको प्रणाम करे, शंकर जी में कामना थी कि हमसे मिले और प्रेम से बोले, लेकिन भगवान में तो ये कोई कामना नहीं थी। अगर विष्णु जैसा भगवान के समान लात मार देते भृगु जी शंकर जी को तो क्या होता। शंकर जी तो टांग पकड़ कर ऐसा पटकते कि फिर भृगु जी का दाम ही नहीं रहता। कैसे लोग ये कह देते हैं कि सब देवता एक समान है, ये मूर्खों का उद्गार है। जो शास्त्र नहीं जानते हैं वही ऐसा कहा करते हैं। भजन करते हैं करें, इसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन सिद्धांत न समझ लें। सिद्धांत यही है कि भगवान परिपूर्ण हैं, वही प्रभु हैं, अपार शांति है और भजन उन्हीं का करना चाहिए। तो इस तरह से नारद जी ने विद्या दिया, यह विद्या है। निवृत्त द्वैत दृष्ट है और जिनकी कृपा से द्वैत दृष्टि समाप्त हो जाती है, शरीर में अहंता और शरीर से संबंधित वस्तुओं में ममता खत्म हो जाती है जिनकी कृपा से, वे हैं भगवान। बच सुप्रत्य प्राप्त एक मनसा। भगवान और भगवान का धाम चिन्मय है, भगवान का वर्णन वाणी नहीं कर पाती है और मन भी सोच नहीं पाता है, मन और वाणी से वो परे है। चूंकि हम लोगों का मन प्राकृत है, मन कहाँ तक जाएगा, केवल प्रकृति के राज तक जा सकता है। और प्रकृति से अतीत भगवान निर्गुण हैं, गुणों से पार हैं, तो उनमें उनके रूप उनके लीला आदि को वाणी बोल नहीं पाएगी और मन समझ नहीं पाएगी। बचसी उपरते अप्राप्त या एको मनसा। नाम रूपश्चिन मात्र, वास्तव में भगवान का नाम प्राकृत नहीं है। जैसे अन्य सबका नाम होता है, इसी प्रकृति के राज्य में कोई नाम दे दिया जाता है, लेकिन भगवान का नाम परम सत्य है और जब से भगवान है तब से उनका नाम है। नाम उनका रूप है, सब चिन्मय है। नाम रूप चिन्ह मात्र, ऐसे भगवान चिन्मय सत असत से परे हैं, कार्य और कारण दोनों से परे हैं, वे हमारी रक्षा करें। जस्मिन् इदम् यतश्चेदम्, जिनमें यह सारा जगत है, जस्मिन् इदम् यतश्चेदम, और जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। किस प्रकार, जिस प्रकार मिट्टी से बनी हुई समस्त वस्तुएं वास्तव में भूमि से निकली हैं और भूमि पर हैं और इसके बाद भूमि में समा जाएंगे, नष्ट हो करके फिर पृथ्वी में पड़ जाएंगे। तो इसी तरह से सारा जगत, सारे जीव जिन भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान में रहते हैं और भगवान में प्रलीन हो जाते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अंतर्बहिश्च वित्तम व्योमन तन्नतोस्मि हम, भगवान सबसे महान हैं और सबके अंदर भी हैं, भीतर भी हैं, सर्वत्र हैं। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान कहाँ हैं, लेकिन भगवान कहाँ नहीं हैं ये वो कोई बताए तो, भगवान सर्वत्र हैं। जैसे आकाश, आकाश सब जगह है पर फिर भी आकाश को हम देख नहीं पाते हैं, हमारे शरीर के बाहर भी आकाश है, सब जगह आकाश, भीतर भी आकाश है। इतना महान होते हुए सब जगह है, सुलभ है। भगवान प्रकृति के राज से बाहर हैं, वैकुंठ में हैं, लेकिन फिर भी वे इस जगत में सब जगह हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान वैकुंठ में हैं, बहुत महान हैं तो हमको कैसे मिलेंगे। वे आकाश की तरह सब जगह हैं। वे थोड़ा भजन करने से भी मिल जाएंगे, केवल नाम का उच्चारण करने से और श्रवण करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन ये भी भगवान के संपर्क से काम करने लगते हैं, जड़ वस्तु भी काम करती है, चेतना आ जाती है। जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है और उससे हम किसी वस्तु को जला सकते हैं, तो लोहा वैसे साधारण चीज़ है लेकिन अग्नि के संपर्क में आने पर वह अग्निमय हो जाता है। लेकिन उसी लोहा से यदि आग का कनेक्शन हट जाता है तो फिर लोहा लोहा रहता है, फिर जला नहीं पाता है। तो इस शरीर में, इस जगत में भगवान हैं, इसीलिए चेतना है, चेतना ही भगवान की उपस्थिति का लक्षण है। भगवान हैं इसलिए वृक्ष हरे भरे हैं, पेड़ पौधे सब हरे भरे हैं, बढ़ रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, मनुष्य भी या पशु पक्षी आदि सब कुछ काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, इसलिए कि भगवान हैं। भगवान की चेतना से ही सब चेतनी भूत होकर के जी रहे हैं। भक्ता एताम प्रपन्नाय विद्याम आदि से नारद यो अंग रसा साकम धाम स्वयं भुवम प्रभु। इस प्रकार चित्रकेतु महाराज को ये परा विद्या, उत्कृष्ट विद्या दे करके नारद जी अंगिरा जी के साथ ब्रह्मा जी के लोक में चले गए, स्वयं भुवम धाम, स्वयंभू के धाम को स्वयंभुआ धाम कहा गया। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे लोक में रहते हैं, जिसको सत्य लोक या ब्रह्म लोक कहते हैं। तो श्री नारद जी अंगिराज के साथ चले गए। यह वर्णन है इस प्रसंग में कि अंगिरा जी जब आए तो उसमें लिखा गया है कि सुखदेव जी कहते हैं स नारद, नारद जी के साथ आए अंगिरा, और जब जाना हुआ तो नारद जी गए और उनके साथ अंगिरा गए। तो पुत्र देने में वैराग की बात सब बताने में अंगिरा जी का प्रधान हाथ है, लेकिन विद्या देने में, मंत्र देने में, भक्ति योग सिखाने में श्री नारद जी प्रमुख हैं। इसीलिए वर्णन है जब नारद जी गए तो उनके साथ अंगिराज भी थे। ये दोनों आए थे ब्रह्मा जी के लोक से और पुनः ब्रह्मा लोक जी के लोक में चले, सत्य लोक में चले गए। चित्र केतु स्तुताम विद्याम यथा नारद भाषिताम धारया मास सप्ताहम अभक्ष सुसमाय। चित्रकेतु महाराज उस विद्या को 7 दिन धारण किए, 7 दिन खूब जपे पढ़े, 6-7 श्लोक में है, ऐसी को खूब रटते थे और मंत्र भी पढ़ते थे। मंत्र अंतिम श्लोक में दिया गया है। तो मंत्र जप किए और इस विद्या का अभ्यास किए, इसको धारण किए 7 दिन। कैसे? अभक्ष, केवल जल पी करके। संपूर्ण भूमंडल का राजा, लेकिन इतनी श्रद्धा थी नारद जी के उपदेश में कि केवल जल पी करके भजन किए। ऐसे व्रत करना चाहिए, जल पी करके 7 दिन जप किए लगातार, चित्त को समाहित करके, एकाग्र करके, सावधानी से जप किए। इस प्रकार से मंत्र में और शास्त्र के उपदेश में श्रद्धा रखनी चाहिए। चित्रकेतु महाराज जप किए, विद्या का अभ्यास किए, अर्थात रटे, याद किए केवल 7 दिन, और इसी से वे कृष्ण में अचल भक्ति पाए, जो भक्ति वृत्रासुर के शरीर में रह गई। यही मुख्य विषय है इस प्रसंग का। सब मिलाकर के भक्ति में महत कृपा परम आवश्यक है। चित्र केतुस्तुताम विद्याम जथा नारद भाषितम, जैसा नारद जी ने कहा था उसके अनुसार उन्होंने जप किया, इस विद्या को पढ़ा। श्रीमद् भागवतम का पाठ करना यह भी विद्या धारण ही है, और महामंत्र का जप करना है। विद्या और जप दोनों होना चाहिए। तो उन्होंने जल पी करके अभ्यास किया तो सिद्ध हो। यथा नारद भाषितम, जैसा नारद जी ने कहा था ठीक वैसा किए, एक एक अक्षर पालन किए। ततः सप्त रात्रांते विद्या धार्य माणया, इस विद्या को धारण करने से और मंत्र को जपने से 7 दिन के बाद चित्रकेतु महाराज 7 दिन के अंदर विद्या धराधिपत्यम ले भे, विद्याधरों के अधिपति हो गए। कहाँ मनुष्य लोक में थे, लेकिन ये विद्या का अभ्यास करने से, मंत्र का जप करने से विद्याधरों के अधिपति हो गए। विद्याधर एक देवताओं की जाति है, जैसे गंधर्व किन्नर आदि हैं, उसी तरह से विद्याधर हैं। विद्याधरों के आधिपत्य को प्राप्त किए। भक्ति का यह आनुषंगिक फल है। जैसे यदि हम गेहूं के लिए खेती करेंगे तो गेहूं का भूसा भी होता ही है, तो भूसा मिलना ये आनुषंगिक फल है, असली फल है गेहूं मिलना। तो इस तरह भक्ति कर रहे थे चित्रकेतु महाराज, तो पहले विद्याधरों के अधिपति हुए, बहुत बड़ा पद था, पृथ्वी के राज से विद्याधरों का राज ज़्यादा उत्कृष्ट है। और फिर भी वे जप करते रहे, मंत्र का जप करते रहे और इस विद्या को पढ़ते रहे। ओम नमो भगवते तस्मै वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरषणाय च इत्यादि पढ़ते रहे। तो विद्या पढ़ने से, मंत्र जप करने से इद्ध मनोगति, उनका मनोगति, मनोवेग इतना बढ़ गया, इस दिव्य विद्या के प्रभाव से और मंत्र जप से उनका मन दिव्य हो गया। और उस मन की सहायता से वे भगवान शेष के चरण के पास पहुंच गए, भगवान शंकरषण के पास चले गए। भगवान शंकरषण इस ब्रह्मांड में सबसे नीचे पाताल लोक में रहते हैं, तो वहां पहुंच गए। जगाम देव देवस्य शेषस्य चरणांतिकम्, जहाँ भगवान शेष विराजते हैं वो कैसे हैं इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। मृडाल गौरम सितिवास संसुरत किरीट केयूर कटित कंकणम प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनमृतम ददर्श सिद्धेश्वर मंडल है प्रभु। मृडाल गौर, कमल के तंतु की तरह वे श्वेत हैं। भगवान शेषनाग बिल्कुल श्वेत वर्ण के हैं, गोरे हैं, मृडाल तंतु के समान, कमल के रेशे जो होते हैं भीतर तोड़ने पर कमल के रेशे के समान श्वेत। लेकिन स्थिति वाससम वस्त्र पहनते हैं नीला नीलांबर। वासुदेव भगवान पीतांबर पहनते हैं और शेष भगवान शंकरषण भगवान नीलांबर नीला वस्त्र पहनते सितिवास सम सूरत किरीट और बहुत सुंदर किरीट चमक रहा था स्फुरत किरीट मुकुट चमक रहा था केयूर और बाहुभूषण बाह में किरीट केयूर और कमर में करधनी बेल्ट कटित और कंकरम कंकरम का हाथ में कंकर बलय सुशोभित रहा सबके लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं स्फुरत स्फुरत किरीट केयूर कटित कंकरम प्रसन्न वक्ता लोचनम भगवान का मुख बड़ा ही प्रसन्न था उनकी आंखें लाल लाल थी वृतम सिद्धेश्वर मंडल है और सिद्धेश्वर सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ सनत कुमार सनंदन सनातन ये सब बैठे थे सारे ऋषि मुनि थे ऋषि मुनि में प्रधान चार कुमार थे भगवान के पास बैठे थे इनसे वृता घिरे हुए भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे चित्रकेतु महाराज ने देखा भगवान को इस तरह तर्दर्शन ध्वस्त समस्त किल दिशा स्वच्छा मलांत कर्णो भयान मुनि प्रवृद्ध भक्त्या प्रणया सुलोचन प्रहिष्ट रोमा नमदादि पुरुषम तद्दर्शन भगवान का दर्शन करने से चित्रकेतु महाराज के सारे कल्मश धुल गए जो भी जीवन में दुख था जो भी थकावट थी पाप ताप था सब भगवान के दर्शन से समाप्त हो गए भगवान के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुए उनका हृदय स्वच्छ और निर्मल हो गया स्वच्छा मलांत अंत हृदय मन बिल्कुल शुद्ध हो गया और अमल हो गया कोई कामना नहीं रह गई संसारी स्वच्छा मलांत कर्ण भयान मुनि प्रवृद्ध भक्त्या भगवान का दर्शन करने से इनकी भक्ति ऐसी उमड़ी कि प्रणया सुलोचना इनके आँखों में प्रेम के आंसू भर आए अतः भक्ति बढ़ने से प्रेम के आंसू उमड़ आए और शरीर में रोमांच हो गया रोए सब खड़े हो गए प्रहृष्ट रोमा और नमत आदि पुरुषम इन्होंने भगवान को प्रणाम किया सौ तमश्लोक पदार्ज विस्तरम ब्रह्मास्मे है नमः तो आँखों में आंसू भरा हुआ था ये भगवान को प्रणाम कर रहे थे तो इनके प्रेमाश्रु से भगवान के चरण रखने की जो चौकी थी जिस चौकी पर गद्दा था भगवान उस पर चरण रखते थे वो भींगने लगा इतना आंसू उमड़ रहे थे कि अश्रु बिंदुओं से चरण रखने की चौकी भींगने लगे निसम्य सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तमान तथा समाधाय मनो मनीषया बभास एतत् प्रतिलब्धवादस। उत्तम श्लोक। भगवान के चरण चरण रखने के आसन को प्रेमाश्रु लेसे ही प्रेमाश्रु के बिंदुओं से उपमेय है भेने लगे और उस समय प्रेमों पर रुद्ध प्रेम के कारण इनका गला रुंध गया, कुछ बोल नहीं पाए। चाहते थे बोलना, भगवान के रूप गुण को कहना चाहते थे लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। अतिशय प्रेम से गला रुंध गया और एक शब्द भी बोल नहीं पाए। ये विद्या का अभ्यास किए थे, भगवान के बारे में बहुत जानते थे, बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए अतिशय प्रेम के कारण। भगवान का दर्शन होने पर भगवान के विषय में बोलने की अवश्य इच्छा होती है, पर चित्रकेतु महाराज अतिशय प्रेम से अवरुद्ध कंठ हो जाने से बोल नहीं पाए। चिरम तम ईडितुम न ससाक चिरम, देर तक ये सिर नीचे किए किए भगवान के चरण के पास रह गए और बोलना चाहते थे पर चिरम न बभास। कुछ देर के बाद इन्होंने अपने मन को अपनी बुद्धि से समझाया, मनो मनीषया अपनी मनीषा से बुद्धि से मन को समझाया, मन को स्थिर किया, तब प्रतिलब्धवाक तब इनको इस समझ में आ गई कि कौन शब्द बोलना है, भगवान के विषय में क्या बोलना है। तो प्रतिलब्ध वाक इनको उचित शब्द मिल गए और बोलने की शक्ति भी आ गई, तो इसके बाद ये बोलने लगे। नियम में बाह्यन वेसर वर्त वर्तमान जगत गुरु सतोत शास्त्र विग्रह। भगवान के श्री विग्रह का वर्णन सात्वत ग्रंथों में है। समस्त वैदिक ग्रंथों में भगवान के रूप का वर्णन मिलता है। प्राकृत जगत में भगवान के रूप का वर्णन तो है परंतु वो प्रमाणिक नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम या उपनिषद, नारद पंचरात्र, ये सब ग्रंथ हैं जिनमें भगवान के वास्तविक रूप का चिन्मय रूप का वर्णन हुआ है। सात्वत शास्त्र विग्रहम, सात्वत शास्त्रों में भगवान के श्री विग्रह का वर्णन होता हुआ है, उसी के अनुसार चित्रकेतु महाराज भगवान के विषय में बोलने लगे। वो उनके प्रवचन को यहाँ दिया गया है। इस पर प्रभुपाद जी प्रपण लिखते हैं कि प्रत्येक भक्त को इच्छा होती है कि श्री भगवान के बारे में कुछ बोल रहे हैं, बोलना चाहता है, लेकिन चित्रकेतु महाराज तो अतिशय प्रेम के कारण बोल नहीं पाए। लेकिन भगवान को देखने पर, भगवान के विषय में सुनने पर अवश्य उत्कंठा होती है कि भगवान के कुछ गुण को, कुछ लीला को मैं भी बोलूं। तो कुछ देर के बाद वे बोलने लगे। चित्रकेतु महाराज के इस स्तुति को, भगवान के गुणगान को अब हम प्रारंभ करेंगे कल से। जय श्रील प्रभुपाद को।